नमस्कार।
नमस्कार।
आज हम एक बहुत ही विशेष पुस्तक पर बात करने वाले हैं, भाव संवेदनाओं की गंगोत्री।
जी।
इसे लिखा है पूज्य गुरुदेव युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने।
हाँ, और ये जो पुस्तक है ये 1988 से 1990 के बीच जो उनकी क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तकमाला आई थी उसी का हिस्सा है।
अच्छा, क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तकमाला।
जी, और ये साहित्य उनके लिए बहुत खास था। पूज्य गुरुदेव ने वसंत पंचमी 1990 को वंदनिया माता जी से कहा भी था कि मेरा ज्ञान शरीर ही जीवित रहेगा।
ज्ञान शरीर?
हाँ, मतलब उनके विचार, उनका ज्ञान जो इस साहित्य में है, और उन्होंने कहा कि इसे जन जन तक पहुंचाना है। तो आज हम उसी ज्ञान शरीर के एक हिस्से को समझने की कोशिश करेंगे।
बिल्कुल। तो मतलब आज हम पूज्य गुरुदेव के विचारों को, खासकर भाव संवेदना को लेकर जो उनके विचार है, उन्हें समझेंगे।
हाँ, पुस्तक कहती है कि ये भाव संवेदना की गंगोत्री अगर सूख जाए तो इंसान, समाज सब कठोर हो जाते हैं। सही बात है। पुस्तक का सार ही यही है कि आज जो सबसे बड़ा संकट है ना, वो बाहर का नहीं है, वो भावनाओं के क्षेत्र का है। मानवीय गरिमा तभी जागेगी जब हमारी ये भाव चेतना, मतलब महसूस करने की जो शक्ति है, वो जागेगी।
अच्छा,
आप इतिहास देखें, जब भी कोई बड़ा बदलाव आया है, कोई अवतारी चेतना आई है, तो उसने सबसे पहले इंसान के अंदर इसी भाव संवेदना को जगाया है।
ये दिलचस्प है। अक्सर हम बदलाव को बुद्धि या राजनीति से जोड़ते हैं, पर यहाँ जोर भावनाओं पर है।
जी,
तो चलिए कुछ उदाहरणों से समझते हैं इसे। पुस्तक शुरू होती है वेदव्यास जी के गहरी पीड़ा से।
हाँ, व्यास जी समाज को देख रहे थे, मोह बढ़ रहा है, प्रेम कम हो रहा है, नैतिक मूल्य गिर रहे हैं, वो बहुत दुखी थे।
उन्होंने तो इतने बड़े काम किए, वेद वर्गीकरण, पुराण, महाभारत, ब्रह्मसूत्र।
बिल्कुल, इतना सब बौद्धिक काम किया, पर उन्होंने देखा कि लोग सार तो पकड़ नहीं रहे, वो कर्मकांड में या फिर वाद विवाद में उलझ गए हैं।
तो उन्हें लगा कि कुछ कमी रह गई। हाँ, उन्हें समझ में ही आ रहा था कि चूक कहाँ हो रही है। तभी देवर्षि नारद आते हैं।
अच्छा, नारद जी।
जी, और वो व्यास जी को बताते हैं कि समस्या बुद्धि या ज्ञान की कमी की नहीं है, समस्या है भाव संवेदनाओं के सूख जाने की।
भाव संवेदनाओं का सूख जाना?
हाँ, नारद जी कहते हैं कि बुद्धि तो ज्यादातर अहंकार के काबू में रहती है, लेकिन जब भाव संवेदना जागती है तो मन और बुद्धि आत्मा के पीछे चलते हैं, और तभी असली पॉजिटिव बदलाव आता है। इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी भावनाओं को लोकहित, मतलब सबके भले के लक्ष्यों से जोड़ें और विवेक का साथ न छोड़ें।
मतलब ज्ञान और बुद्धि तब तक अधूरे हैं जब तक भावनाएं सही दिशा में न हों, विवेक के साथ।
बिल्कुल। और ये जागी हुई भावना किसी इंसान को कैसे पूरी तरह बदल सकती है, इसका एक बहुत सशक्त उदाहरण सम्राट अशोक का दिया है पुस्तक में।
बिल्कुल। अशोक, जिन्हें चंड अशोक कहा जाता था, क्रूर
जी,
लेकिन कलिंग युद्ध की वो जो विभीषिका थी, वो मारकाट, उसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। वो युद्ध का मैदान, वो लाशें, और फिर एक बूढ़े कैदी के शब्द।
क्या कहा था उन्होंने?
उन्होंने कहा, वीरता क्रूरता नहीं है, वीरता तो सताए हुओं के कष्ट हरना है। ये बात और वो दृश्य अशोक को बेचैन कर गया।
फिर वो आचार्य उपगुप्त से मिले।
जी, और वहां उन्हें वीरता का असली मतलब समझ आया। उदार आत्मीयता, अपनापन बढ़ाना, दूसरों का दर्द महसूस करना और उसे दूर करने के लिए काम करना।
और फिर उन्होंने सिर्फ महसूस नहीं किया, उन्होंने अपना जीवन बदल डाला।
हाँ, पूरी तरह से। स्वाध्याय किया, सत्संग किया, सादा जीवन अपनाया, यहाँ तक कि अपने बेटे बेटी महेंद्र और संगमित्रा, उनको भी जनकल्याण में लगा दिया।
ये दिखाता है कि अगर अंदर संकल्प जाग जाए, संवेदना जाग जाए, तो कितना बड़ा, मतलब पूरा का पूरा बदलाव आ सकता है।
सही कहा आपने। सच्ची वीरता बाहर की ताकत नहीं, वो अंदर की क्षमता है, दूसरों का दर्द महसूस करके उसे दूर करने की। यही भाव संवेदना है जो कर्म में बदलती है।
ऐसा ही एक और दिल को छूने वाला उदाहरण महात्मा गांधी का है।
हाँ, गांधी जी का। वो दक्षिण भारत की यात्रा पर थे
और उन्होंने एक गरीब स्त्री को देखा फटे छीतड़ों में।
जी, और बस वो एक दृश्य देखकर उनका दिल पिघल गया, इतनी गहरी चोट लगी उन्हें।
और उसी एक पल ने उन्हें
उसी एक पल की अनुभूति ने उन्हें जीवन भर आधी धोती पहनने का संकल्प लेने पर मजबूर कर दिया। आप सोचिए,
ये सिर्फ कपड़े बदलना नहीं था।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उनकी गहरी आंतरिक संवेदना थी। देश के करोड़ों गरीबों के साथ खुद को जोड़ने का भाव था। उन्होंने दिखा दिया कि असली बड़प्पन सादगी में है, सेवा में है, भारी दिखावे में नहीं।
और यही भाव संवेदना उन्हें जीवन भर एक्टिव रखती है।
हाँ बिल्कुल, स्वराज का संघर्ष हो या लोक सेवकों को तैयार करना हो, ये अंदर की आवाज थी।
संवेदना का एक और बहुत शक्तिशाली रूप ठक्कर बापा के जीवन में दिखता है।
हाँ।
कैसे एक घटना ने उनकी जिंदगी की दिशा ही मोड़ दी।
जी हाँ, ठक्कर बापा जो असल में इंजीनियर थे,
अमृतलाल ठक्कर
इंजीनियर थे वो। हाँ, अच्छी नौकरी, सुख सुविधा सब था, पर एक बार उन्होंने एक हरिजन भाई की बहुत ही दर्दनाक हालत देखी, उसके शब्द सुने और बस उनकी संवेदना इतनी जाग उठी कि उन्होंने सब छोड़ दिया, नौकरी, घर बार, आराम, सब
सब छोड़ दिया।
हाँ, और उन्हीं दीन दुखियों के बीच जाकर रहने लगे, उनकी सेवा करने लगे, खुद सफाई करते, उन्हें पढ़ाते, उनका जीवन स्तर उठाने की कोशिश करते।
कितना गहरा समर्पण।
बहुत। महात्मा गांधी भी उनकी इस सेवा और उनकी संवेदना की गहराई से बहुत प्रभावित थे।
और पुस्तक में लिखा है कि बापा ने उन दलितों की सेवा में ही ईश्वर के दर्शन किए।
जी, वो कहते थे उन्हें नंद कुमार के दर्शन हुए। पूज्य गुरुदेव यही कहते हैं कि ये जो दिव्य दृष्टि है ना, ये गहरी संवेदना से ही मिलती है।
तो इन सारे उदाहरणों से एक बात तो साफ है, जो पूज्य गुरुदेव कहना चाहते हैं कि भाव संवेदना ही इंसानियत की जड़ है, वो गंगोत्री है।
बिल्कुल।
इसके बिना ज्ञान हो, शक्ति हो, पैसा हो, सब दिशाहीन हो सकता है।
सही कहा, जब ये अंदर की गंगोत्री बहती है, ये महसूस करने की क्षमता बहती है, तभी व्यक्ति में, समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा आती है, सृजन होता है। व्यासों, अशोक, गांधी, चैतन्य, मीरा या ठक्कर बापा, ये सब इसी सच्चाई को दिखाते हैं।
वाकई, अब सोचने वाली बात ये है कि आज के समय में हम अपने अंदर इस संवेदना की गंगोत्री को कितना जगाए रख पाते हैं। क्या हम रुककर अपने आसपास की पीड़ा को, दुख दर्द को महसूस करते हैं?
और क्या सिर्फ महसूस करते हैं, या उसे सक्रिय करुणा में, सेवा में बदल पाते हैं, जैसा पूज्य गुरुदेव ने इन उदाहरणों से सिखाया है?
शायद यही आत्म जागृति की तरफ, एक सार्थक जीवन की तरफ पहला कदम है।
जी, और प्रकाशक का भी यही अनुरोध है कि पूज्य गुरुदेव का ये जो ज्ञान शरीर है, ये पुस्तकें, इनका ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो, प्रसार हो, ताकि ये विचार जन जन तक पहुंचे।